यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यशोदानन्दन व्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टौत्र शतश्री श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की समवेद गौर भक्तरुंद की इथाई गौर प्रेमानंदी ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद दसवा अध्याय 52 भगवान कृष्ण के लिए रुक्मिणी का संदेश श्लोक क्रमांक 37 श्री रुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर सुन्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम् रूपं दृशां दृशितमाखिलार्थलाभम् त्वयच्युता विशति चित्तमपत्रपं ते श्रीरुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्णैर्विवरैर्हरतो अंगतापम् रूपं दृशां दृशितमाखिलार्थलाभम् त्वयाच्युत विशति चित्तमपत्रपं मे श्रीरुक्मिणी उवाच श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताखिलार्थलाभम् त्वयाच्युत विशति चित्तमपत्रपं मे अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे अपने पत्र में श्री रुक्मिणी ने कहा हे जगतों के सौंदर्य आपकी गुणों के विषय में सुनकर जो कि सुनने वाले में के कानों में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं और आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले की सारी दृष्टि संबंधी इच्छाओं को पूरा करता है हे कृष्ण मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। तात्पर्य श्री रुक्मिणी एक राजा की पुत्री थी वह साहसी तथा निडर थी और वह कृष्ण के प्राप्त न होने पर मरना पसंद करती। यह सब विचार करके उसने एक स्पष्ट खुला पत्र लिखा जिसमें कृष्ण से याचना की गई थी कि वे आकर उसे ले जाए। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाखया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टम् येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंदेहम श्री गुरो श्रीयुता पदकमलम श्री गुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमा ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो राजा कंस का वध करने के बाद जरासंध जो कि कंस का ससुर है, उसकी दो पुत्री अस्त्य और प्राप्ति दोनों से शादी की थी कंस ने, तो उसका वध करने के बाद जरासंध मथुरा लूटने के लिए आया और कृष्ण फिर से आके मथुरा में जो भी मथुरा में सब संपत्ति जमा करके भाग निकलते हैं। तब जरासंध को पता चलता है, जरासंध भी उनके पीछे दौड़ता है, कृष्ण और बलराम सब कुछ छोड़कर, ऐसा प्रतीत होता है जरासंध को कि मेरे को डर कर ये दोनों भी भाग रहे हैं। दोनों भागते 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 एक परिहस नाम के पर्वत के पास आते हैं, वो पर्वत इतना ऊंचा है उसको चढ़ जाते हैं और जरासंध समझता है कि ये कृष्ण और बलराम किसी गुफा में छुप गए हैं, तो इस पूरे जंगल को आग लगा दी जाए तो कृष्ण और बलराम दोनों भी आग में जलकर मर जाएंगे। तो इस दुष्ट भावना से वो जंगल को आग लगा देता है, लेकिन कृष्ण और बलराम किसी के पकड़ में नहीं आते हैं। वो उससे वहां से निकलते हैं, पर्वत की चोटी पर आते हैं और वहां से कूदते हैं। भागवतम कहता है कि 90 मील कूदते हैं। तो कृष्ण जो भी करते हैं वो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसा कैसा है कि 90 मील कूदते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा मत समझो भागवत में जो बताया है ये कपोल कल्पित कथा है या मन के द्वारा रची कथा है, ये सत्य है। तो हमारा विश्वास रहे या न रहे, तो कृष्ण के कर्म को उरुक्रम कहा गया है जो कि सामान्य मानव नहीं कर सकता, ऐसे कर्म कृष्ण करते हैं, इसलिए उनको दिव्य कहा है। तो कृष्ण कूदते हैं और पहले ही बनाई उनकी द्वारका नगरी है वहां पर आते हैं, और द्वारका में आने के बाद एक दिन उनको एक ब्राह्मण पत्र लेके आते हैं और इस पत्र में ये सबसे पहला लव लेटर है, दिव्य है, यहां भी प्रेम पत्र लिखे जाते हैं। तो हमें पता है कि किस प्रकार से भौतिक दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है ये केवल एक नकल है भगवत धाम की, लेकिन भगवान के धाम में ये दिव्य स्तर पर है, सही स्तर पर प्रेम का वर्णन हो रहा है और यहां इसकी केवल नकल की जाती है। तो भीष्मक ये विदर्भ का राजा है जो कि महाराष्ट्र में है और वहां कौंडिन्यपुर नाम का एक गांव है, वहां वो रहते हैं। तो उनके वो पांच पुत्र है, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश और रुक्ममाली, और उनको एक बहन है उसका नाम है रुक्मिणी। सो उनके घर पे बहुत से साधु संत आते थे, दर्शनार्थी आते थे, लोग मिलने के लिए आते थे। तो इन सब को कृष्ण की कथा, कृष्ण के पराक्रमी कथा को सुनने को मिलता था। से नारद मुनि प्रभुपाद कहते हैं नारद मुनि जैसे साधु भी आते थे। तो ये भक्ति का शुरुआत है। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन की हृत कर्ण रसायन कथा। सताम मतलब साधुओं के संग में हम जब कृष्ण के बारे में सुनते हैं तो हृदकर्ण हमारा हृदय और कर्ण दोनों भी शुद्ध हो जाते हैं। और उसके बाद में अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति, ये अनुक्रम में आते रहता है। श्रद्धा उत्पन्न होती है और रति प्रेम उत्पन्न होता है और इस प्रकार हमारी भक्ति में हम उन्नति करते हैं। तो ये कृष्ण का वर्णन सुन के रुक्मिणी ये निश्चय करती है कि मैं अगर विवाह करूंगी तो कृष्ण के साथ ही करूंगी। और क्योंकि हालांकि भीष्मक और सब लोग चाहते थे कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो जाए, लेकिन रुक्मी है ये द्वेष्टा था कृष्ण का और इसीलिए उन्होंने रुक्मिणी की शादी शिशुपाल से तैयार की थी। तो ये रुक्मिणी को सब समझ गया तो वो गंभीरता से विचार करने लगी। और प्रभुपाद कहते हैं कि वो राजपुत्री है। राजपुत्री का मतलब क्या है? थोड़ा डेरिंग है, कर सकती है। तो लेकिन ये कैसा करना? कृष्ण तो द्वारका में रहते हैं और आपको पता है कि ये कौंडिन्यपुर अमरावती के पास है महाराष्ट्र में, और द्वारका मतलब उस समय कोई फ्लाइट नहीं थे और कोई भी साधन नहीं था और समुन्दर पार करके जाना है तो ये कैसे करेगी? और भागवत में तो बताया है कि ये केवल बीच में दो ही दिन थे। तो सोचिए आज के दिन आपको गाड़ी से जाना है तो भी कम से कम 14-15 घंटा लगेंगे। तो कैसे जाना है? तो रुक्मिणी ने एक विश्वासु ब्राह्मण को बुलाया और उसके पास एक खत लिख के दिया और उस खत में वो वर्णन करने लगे कि आप 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और केवल आपकी कथा श्रवण करने से ही आपके चरणों का आश्रय लेने का और आपकी पत्नी होने का मेरी इच्छा हो रही है। और ये तो मैं निर्लज्जता से, मतलब यहां कह रहे हैं कि मैंने अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। तो निर्लज्ज क्यों कहा है? भगवान को तो प्राप्त करना चाहती थी तो इसलिए कहा है कि स्त्री जो है ये कभी भी अपना मन जो है ये ऐसे किसी पुरुष के संग के साथ खुला नहीं करती है। तो ये इसीलिए कहते हैं कि मैं निर्लज्जता से बता रही हूं, मैं आपसे प्रेम करती हूं। तो आजकल के यहां हम देखते हैं कि जो सिनेमा रहते हैं उसमें भी ये निर्लज्जता दिखाई दी जाती है लेकिन उसमें काम वासना है। तो यहां पर निर्लज्ज ये बता रही है, इस निर्लज्ज का मतलब है लज्जा को छोड़कर। तो स्त्री का सबसे बड़ा गुण है लज्जा और उसको छोड़कर मैं बता रही हूं कि मैं आपसे प्यार करती हूं और इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। तो आप कुछ भी कीजिए और मेरा विवाह ये शिशुपाल से हो रहा है तो आप आकर अपने इस मगध सैन्य का पूरी प्रकार से संहार करके जिस प्रकार सिंह सियर को अपने जो प्रे बॉडी कॉल प्रे इन हिंदी शिकार अपने शिकार को जैसे उठा के लेके जाता है उसी प्रकार आप आके मुझे उठा के ले जाइए। और मैं राक्षस पद्धति से आपसे विवाह करना चाहती हूं। तो इतना ऐसा खत लिखकर ब्राह्मण के पास दिया और वो ब्राह्मण खत लेके आए और भगवान श्री कृष्ण अपने आए राजसिंहासन पर बैठे थे और तुरंत ब्राह्मण को देखकर वो वहां से नीचे उतरे और ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनका हाथ पकड़कर वो आसन पर लेके आए। वहां उस पे उसके चरण धोए, उनको चंदन लगाया, हार डाला और नम्रता से उनसे प्रार्थना की और पूछने लगे कि आप ब्राह्मण है, सब कुछ संतुष्ट है ना? क्योंकि कोई भी भगवान के पास जाता है तो किस लिए जाता है? कुछ तो मांगने के लिए जाता है। तो इसलिए ब्राह्मण को पूछ रहे हैं, तो आप संतुष्ट है ना? सब कुछ ठीक है? आपका धर्म पर आचरण, धर्म का आचरण कैसे चल रहा है? और वो कहते हैं अगर संतुष्ट नहीं है तो वो जो है कभी भी सुख से नहीं जी सकता है। तो वहां पर कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण का मतलब है संतुष्ट है और इसको थोड़ा हमें विचार करना चाहिए। ब्राह्मण को क्यों संतुष्ट रहना चाहिए? क्योंकि ब्राह्मण किसी बाहर के वस्तु पर निर्भरित नहीं रहता है। ब्राह्मण जो है आत्माराम, ये अंदर से संतुष्ट रहता है, इसलिए उसको संतुष्ट करने के लिए बाहर की कोई भी चीज नहीं चाहिए, तो इतना वो संतुष्ट है। अगर वामनदेव बलि महाराज को कहते हैं अपने पास जितना है उसमें अगर कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, भले उसको त्रिलोक का राजा भी बना जाए, वो संतुष्ट नहीं हो सकता है। हम उदाहरण देख सकते हैं हिरण्यकश्यप, रावण, किस प्रकार से वो त्रिलोक के नियंत्रण में थे फिर भी संतुष्ट नहीं थे। तो ब्राह्मण का ये लक्षण होना चाहिए, जितना भी है। जैसे तुकाराम महाराज कहते, ठेविले आनंद देते ऐसे रहावे, चित्तिया सुदैवे समाधान। जितना भगवान ने दिया है उतना में संतुष्ट रहना। इसलिए प्रभुपाद कहते सिंपल लाइफ इज वेरी सिंपल, जीवन बहुत सिंपल है, चांट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो हम प्रयास कर रहे हैं पहले हैप्पी होने का, बाद में चांट हरे कृष्ण, ये उल्टा कर रहे हैं, इसलिए हम संतुष्ट नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि सुबह जपा करो, सोलह माला, भागवतम पढ़ो, मंगल आरती करो, गुरु पूजा करो, प्रसाद खाओ और बाद में जो भी हरि देता है उसके ऊपर क्या रहो आप अवलंबित रहो। हमारा उल्टा है, सब कुछ पहले करते हैं, शाम को सोलह माला याद करने की याद आती है। तो ब्राह्मण है संतुष्ट, संतुष्ट किसमें है? अगर आध्यात्मिक दृष्टि से अगर संतुष्ट नहीं है तो भले दिन भर आपको कितने भी इंद्रिय तृप्ति दी जाए तो संतुष्ट नहीं हो पाओगे, इसलिए ब्राह्मण है संतुष्ट। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण पूछ रहे आप संतुष्ट है ना? तो बाद में ब्राह्मण को ऐसा पूछने के बाद ब्राह्मण तो हंसता है और प्रणाम करता है, तो कहते हैं कि बोलिए इतना समुन्द्र पार करके इतनी कठिनाइयों से आपको यहां आना कैसे हो गया? कुछ खास के लिए आए हो आप? तो ब्राह्मण कहता है कि हाँ, मैं ये गुप्त संदेश लेके आया हूं, मैं विदर्भ से आया हूं, कौंडिन्यपुर से, और मेरे पास ये गुप्त संदेश है, पत्र है आपके लिए, ये रुक्मिणी ने लिखा हुआ है। तो रुक्मिणी का पत्र भगवान को पढ़ के दिखाते हैं ब्राह्मण, और ब्राह्मण को भगवान कहते हैं रुक्मिणी मुझे मालूम है, अभी कृष्ण रुक्मिणी को कृष्ण मालूम है ये कैसे मालूम है पता चलता है, लेकिन कृष्ण को रुक्मिणी कैसे मालूम है इसका कहां उल्लेख नहीं है शास्त्र में, तो इससे हम कैसे समझ सकते हैं? ये कृष्ण को, कृष्ण तो सबके हृदय में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति अर्जुन, तो किसके किसके हृदय में क्या चल रहा है ये उसको भी नहीं पता चलेगा, लेकिन पहले भगवान को पता चलता है। तो रुक्मिणी खत रही है, रुक्मिणी खत लिख रही है, लेकिन कृष्ण को कैसे पता है? ये तो द्वारका में है, ये कौंडिन्यपुर में है, वो प्रेम करती है। और कृष्ण भी कहते हैं कि मैंने भी सुना है कि रुक्मिणी बहुत गुणवान है, सौंदर्यवान है, और वो मुझसे प्यार करती है। तो सच कहूं मैं भी बहुत रुक्मिणी से प्यार करता हूं, इतना प्यार करता हूं कि उसकी सोच करते करते हुए मुझे कभी रात को नींद भी नहीं आती है, ये भगवान कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जरूर रुक्मिणी इच्छा पूरी करने के लिए हम जरूर जाएंगे। तो वक्त तो नहीं है, तो दारुक को बुलाते हैं भगवान श्री कृष्ण और दारुक को कहते हैं कि चलो तुरंत जाना है। तो जितना लंबा जाना है उतने घोड़े लगते थे, तो ये सबसे लंबा जाना है तो 5 घोड़े लेके निकले और रथ आया। यहां पर रुक्मिणी के पिता भीष्मक शादी की तैयारियां कर रहे हैं, सब नगर पूरी प्रकार से स्वच्छ हो गया है, सब रास्ते स्वच्छ हो गए हैं, रास्ते के ऊपर सुगंधित द्रव्य कुछ स्प्रेड क्या बोलते छड़काया, तो और सब महल जो है ये सुशोभित किए हैं और स्वयं भीष्मक सब जो भी शादी के लिए आ रहे हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। तो शादी की पहली पार्टी आ गई दामघोष और उसका पुत्र शिशुपाल और इनके कई अक्षविणी सैन्य लेकर ये शादी में आ गया, उसमें शाल्व है और उनके सब जरासंध है और भी कोई अनेक सैनिक है। तो शादी के लिए सैनिकों की क्यों जरूरत है? तो उनको पता है कि रुक्मिणी ये लव लेटर भेजा है पहले, ऐसा तो उनको पता चलता है, कोई तो मैसेज भेज देता है, तो उसकी तैयारी करके आ रहे। अगर कृष्ण बलराम आ गए तो आ गए कृष्ण, अरे कृष्ण बलराम सही वक्त पे आते हैं। कृष्ण बलराम आए तो उनके साथ युद्ध करने के लिए और जरासंध तो सोच रहा था कि अरे ये तो अग्नि में जल के मर जाना चाहिए, तो ये कैसे इधर आ गया? तो ये सब तैयारियां तो भीष्मक उनकी स्वीकार कर रहे हैं, हर एक व्यक्ति को स्वागत कर रहे हैं, उनको चंदन लगाकर उनको हार डालकर उनका स्वागत कर रहे हैं और उनके रहने की व्यवस्था कर रहे हैं और भीष्मक स्वयं ये सब कुछ देख रहे हैं। तो शाम के वक्त जहां रुक्मिणी तैयार हो रही है, उन्होंने स्नान किया, नए कपड़े डाले, उसी प्रकार उनकी दासियां हैं उन्होंने भी नए स्नान किया और नए कपड़े डाले और वो दुर्गा के मंदिर में जा रहे हैं। तो तब कृष्ण और बलराम आते हैं तो भीष्मक उनका भी स्वागत करते हैं, ये रुक्मिणी को अभी तक पता नहीं है, तो उनका भी स्वागत करते हैं, उनको रहने के लिए जगह देते हैं। तो रुक्मिणी सोच रही है कि अभी तक मैंने जो संदेशा भेजा है मिल गया या नहीं मिल गया कृष्ण को, ना तो ब्राह्मण वापस आया और ना कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। वो जा रही है दुर्गा के पास लेकिन मन में विचार चल रहे हैं कृष्ण के बारे में, तो इसलिए किसी की व्यक्ति के एक्सटर्नल बाह्य कर्म को हमें नहीं देखना चाहिए, उसके अंतःकरण में क्या चल रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक रीति से ये भी पत्र में लिखकर भेजा था कि मैं शादी से पहले हमारी जो प्रथा है दुर्गा मंदिर में जाऊंगी और वहां पर आके आप मुझे हरण करना, क्योंकि आप सोच रहे होगे कि इतने लोगों में आपको उठाकर लेके जाना है, तो अंदर आने के लिए महल में अंदर आने के लिए आपको शायद बहुत लोगों की हत्या करनी पड़ी होगी और अंदर आके मुझे लेके जाना होगा। तो ये सोचकर रुक्मिणी ने दिखाना कि जब मैं अकेली मेरी सहेलियों के साथ जब दुर्गा मंदिर में जाऊंगी तब ज्यादा कोई लोग नहीं रहेंगे, केवल मेरी सहेलियां रहेंगी और उस समय आप मुझे आकर लेके जाना। तो जाते जाते दुर्गा मंदिर में वो कृष्ण के बारे में सोच रही है और सोच रहे कि अभी तक कोई खबर नहीं आई, कृष्ण नहीं आए, क्या हो गया, मैंने ऐसे पुण्य कर्म नहीं किए क्या, क्या मैंने सेवा नहीं की वैष्णवों की, क्या मैंने देवताओं की सेवा नहीं की, क्या मैंने शिव पार्वती को प्रसन्न नहीं किया, किस वजह से कृष्ण अभी तक नहीं आए। तो ऐसा सोचते सोचते वो दुर्गा मंदिर में जा रही है और दर्शन करके बाहर आने लगती है, तो उसके बाएं शरीर में कुछ शुभ शकुन दिखने लगते हैं। उसकी जांग है, उसका बाया हाथ है और उसके बाएं नेत्र, ये सब फड़फड़ाने लगते हैं। सो रुक्मिणी सोचती कि ये तो शुभ सूचक है, ये शुभ चिन्ह है, तो शायद कृष्ण आ रहे हैं, तो फिर भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अधीरता विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं, ये अधीरता जो है भगवान के दर्शन की या भगवान के संग की, इस अधीरता से हमारे सब और भाव जो है नष्ट हो जाते हैं, और इसलिए भक्त को अधीर रहना चाहिए, उत्साह ही रहना चाहिए। क्योंकि ऐसा प्रतीत हो रहा था रुक्मिणी को, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो कभी कभी हम जब नए भक्त रहते हैं, कभी कभी पुराने भी हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं कि पुराना भी नया ही रहता है, लोगों को लगता है कि पुराना भक्त नया नहीं है। तो जब भी हमें कृष्ण भक्ति छोड़ने का विचार आ जाएगा, तब तक हमें समझना चाहिए कि हम नए हैं। ऐसे बहुत से प्रसंग कृष्ण भक्ति में आते हैं, ऐसा लगता है कि अरे भगवान मेरा जपा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, भगवान मेरी तरफ ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे, इतनी कठिनाइयां क्यों आ रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं आ रहे। ये अधीरता है, इससे दो चीज उत्पन्न हो सकते हैं, एक भगवान के प्रति विरह, दूसरा भगवान के प्रति संशय, दोनों हो सकता है। वे अभी तक क्यों नहीं आए, मैंने बुलाया अभी तक क्यों नहीं आए। तो इसलिए अगर भक्तों के संग में रहेंगे, हम विरह भावना को भगवान की कथा सुन के, भगवान की कथा श्रवण से हमारा हृदय शुद्ध होता रहेगा, और हम भगवान के लिए प्रतिष्ठा करने के लिए थोड़ा और रुकेंगे। अगर संशयी मन रहा तो हम संशयी लोगों के पास साथ रहेंगे, जो कि इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, और हम देखते हैं कि अरे हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, तो लोग आनंद उठा रहे हैं, इनके साथ रहूंगा तो मेरा, मैं भी इनके से ऐसा आनंद यहां है, सुबह उठना है, इतनी तपस्या करना है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, इतने बार समय उठना, यही पढ़ना, ये नहीं सुनना, कितने सब ना 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 है, और ये व्यक्ति तो सब हा 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 ही है। तो ये संशय होगा तो हम क्यों देखते है? अरे वो इतना आनंदी है तो हम भी ऐसे आनंदी बन जाए। तो इसलिए दो चीज हो सकती है अगर मन में अधीरता है। तो रुक्मिणी की अधीरता ऐसी नहीं थी, रुक्मिणी को गारंटी था, विश्वास था। तो जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात संगत्यागात सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्यति। भक्ति में उन्नति अगर करनी है तो पहले उत्साह चाहिए। तो रुक्मिणी ने उत्साह तो हुआ, पहले उत्साह तो था, पत्र भेज दिया उत्साह में ही, तो निश्चय भी किया कि मैं शादी करूंगी तो कृष्ण से ही करूंगी, यह निश्चय है। तो अगर उत्साह और निश्चय है तो धैर्य की भी जरूरत है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी चीज आसानी से नहीं मिलती है, और भगवान तो कभी नहीं मिलेंगे आसानी से। भगवान तो पहले हमें दूर रखना चाहते हैं, जितना प्रयास करते हैं हमें जितना हम नजदीक जाने का प्रयास करेंगे, भगवान हमें दूर रखने का प्रयास करेंगे। तो किस लिए? इसलिए कि हम उससे अधीर हो जाए। जैसे हम ध्रुव महाराज को देखते हैं कि भगवान ने दर्शन दिया नारद मुनि की कृपा से और बाद में लुप्त हो गए, तो क्या कहते हैं भागवत में, इसलिए दर्शन दिया ताकि आप अभी उस रूप के लिए जो आपने देखा है उसके लिए आप अपना हृदय शुद्ध करते रहो। इसलिए भक्ति में जब हम आते हैं तो पहले बहुत उत्साही रहते हैं, बहुत उत्साही रहते हैं, जो भी कहो करते रहते हैं, लेकिन जैसे बरस चला जाता है, दो बरस, तो हमारा ढीला हो जाते हैं। तो हर समय जैसे पहले उत्साह था, मरने तक, मरते समय भी उतना ही उत्साह चाहिए जैसे हम पहले उत्साह से आए थे। वही उत्साह भक्ति में भले कितनी भी कठिनाई आए, भले कृष्ण न आए, असली सेवा पादरता हम चैतन्य महाप्रभु से कहते हैं कि आप गले लगाओ या मुझे लात मारो, मैं आपका ही हूं। तो इसलिए भगवान लात मारते ही रहते हैं देखने के लिए आप उनके हैं या नहीं, ऐसे लात मारते रहेंगे। लेकिन भगवान की लात में और माया की लात में बहुत फर्क है, तो किसकी तो लात खानी ही पड़ेगी, या तो भगवान की या तो माया की। लेकिन भगवान मारते मारते, जैसे फुटबॉल में क्या होता है, गोल नहीं होगा तो फुटबॉल का क्या फायदा है, अगर गोल निकाली दो, गोल का जो रहता है, तो लात मारते मारते उधर उधर घूम रहा है फुटबॉल, लेकिन उसके लिए गोल ही नहीं है। तो कृष्ण है, लात मार के गोल भगवत धाम में चले जाते हैं, तो लात तो खानी ही पड़ेगी। तो ये धैर्य है, जीवन में कितने भी कठिन प्रसंग आ जाए फिर भी भगवान को बुलाते रहना, फिर भी भगवान को बुलाते रहना। और प्रभुपाद ने हमें आसान सा मार्ग बताया है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये अगर हम प्रामाणिकता से करेंगे, मतलब भगवान को बोल रहे हैं हम, भगवान हमें, हम आपको ही चाहते हैं, हम सेवा करेंगे तो आपकी ही करेंगे, हम प्रेम करेंगे तो आपसे ही करेंगे, तो भगवान परीक्षा लेते हैं ये सही है या खाली बोल रहे हो। तो जपा करते हैं ऐसे, पहले तो हम प्रामाणिकता से मांगते भी नहीं है, सब जगह ध्यान देके भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान को मालूम है इसका पहले मेरे पास दान ही नहीं है, तो क्या मांग रहे उसको भी पता नहीं क्या मांग रहा है। तो ध्यान पूर्वक जप किस लिए कहा है कि हम इस भावना से भगवान के पास मांगे कि भगवान, इसलिए पहला शब्द हम आते हैं मंदिर में कौन सा है, संसार दावा नललीड लोक। तो हम भगवान के पास कहते हैं कि यह संसार दावानल है, मतलब आग लगी हुई है और मैं इसमें ऐसा अटक गया हूं। लेकिन दिन में ऐसा होता है प्रतीत कभी, मैं आग से, चारों बाजू से आग है हमारे, नहीं लगता है, आराम से सब कुछ चल रहा है, अग्नि में पड़े हुए हैं। जैसे सुबह मंगल आरती में संसार दावा कहते हैं, लेकिन वो संसार दावा शब्द खत्म हो गया तो आनंद ही आनंद है। तो वो कहने में और करने में बहुत फर्क है, संसार दावा हमें दिन भर ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हम संसार दावा नल में है, तब हम घना घनत्वम ऐसे ही बारिश की याद करेंगे, बारिश के ऊपर निर्भर रहेंगे। तो भगवान कसौटी लेते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं, तो रुक्मिणी भी ऐसी है, रुक्मिणी की परीक्षा ले रहे हैं। हालांकि रुक्मिणी की परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर उनका नित्य संबंध हम समझ लेंगे तो जैसे एक पद्म पुराण में कहा है, जैसे एक वृंदावन के कृष्ण के लिए राधारानी है, ऐसा 108 गोपियां हैं जो बहुत वेरी क्लोज, बहुत नजदीकियां हैं, और उसमें से 8 गोपियां उससे भी नजदीक है, उसमें से 3 और भी नजदीक है, और उसमें से एक अनाराधितो राधा, ये सबसे प्यारी है। उसी प्रकार गोप में भी अनेक गोप है, लेकिन सबसे गोपाल है भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से जैसे वृंदावन में कृष्ण और राधारानी है, वही द्वारका में कृष्ण और रुक्मिणी है, विस्तार स्वरूप है। जैसे कृष्ण का विस्तार है मथुरा के कृष्ण, द्वारका के कृष्ण और वृंदावन के कृष्ण, उसी प्रकार राधारानी का विस्तार है रुक्मिणी और सब लक्ष्मी। तो उनके लिए विरह का कोई संबंध नहीं है, लेकिन रूप गोस्वामी जब कहते हैं तत्तक कर्म, मतलब जैसे महाजन भगवान के पास गए, उनके चरणों पे कदम रखकर हमें जाना है, तो रुक्मिणी दिखा रही यहां कैसे हमें दृढ़ता, कैसे हमें निश्चयता और कैसा धैर्य हमें रखना है। और बाहर से हमारे शरीर से हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, फिर भी अंदर से किस प्रकार से भगवान के प्रति निर्भर रहना है, भगवान की राह देखना है और भगवान का विचार करते रहना है। ये आसान चीज नहीं है। जैसे भीष्म है, ये भीष्म रहते हैं कौरवों के साथ लेकिन चिंता कर रहे हैं पांडवों की, कृष्ण की। उसी प्रकार जो भौतिक दुनिया में आता है उनका जीवन रुक्मिणी जैसा है, भीष्म के जैसा है। क्यों? क्योंकि वो भक्तों के साथ नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम दिन में मिलते हैं किसको, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, हम दिन भर जो राक्षस है, भौतिक इंद्रिय तृप्ति का जिसका मन है, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं। जैसे भीष्म है, दुर्योधन, कर्ण और ये धृतराष्ट्र, शकुनी, ऐसे लोगों के साथ रहे लेकिन हृदय से पांडवों की कैसा भला होगा, कृष्ण की मैं कैसे सेवा करूं, इसका सोच रहे हैं। रुक्मिणी भी, रुक्मिणी ने पहले से ही शिशुपाल से उसका शादी तय कर लिया है। शिशुपाल मन में सोचता होगा कि किस प्रकार से रुक्मिणी को मैं प्राप्त करूंगा और किस प्रकार से उनको मैं राजमहल में लेके जाऊंगा। बहुत बड़े स्वप्न देख रहा है लेकिन रुक्मिणी नहीं देख रही है, रुक्मिणी सोच रही है कृष्ण के बारे में। तो दोनों प्रसंग में हम देखते हैं कि वो असंग में है, संग में नहीं है, असंग में। भीष्म जय कौरवों के साथ, रुक्मिणी है इन सब, रुक्मी शिशुपाल इनके संग में, रुक्मी के संग में। तो अंदर से विचार जो है, तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि किस प्रकार से हमको इस भौतिक दुनिया में रह के भगवान के ऊपर इतनी श्रद्धा, इतना हमारा संबंध, हर चीज को भगवान के संबंध में देखना, हर चीज को भगवान को अर्पण करने के लिए उसका स्वीकार करना, इस भाव में रहना और इंतजार करते रहना कि भगवान की कृपा मुझे कभी ना कभी तो प्राप्त होगी। और यह है धैर्य। तो रुक्मिणी इस धैर्य से दुर्गा मंदिर से बाहर आ रही है, तब उस ब्राह्मण का दर्शन होता है। और ब्राह्मण का दर्शन होने से रुक्मिणी का आधा जो है, पहले वो बहुत अधीर थी, वो अभी शांत तो हो जाती है कि कम से कम जिस ब्राह्मण को मैंने भेजा था वो आ गया। और ब्राह्मण आके रुक्मिणी को बताता है कृष्ण आ गए हैं। तो रुक्मिणी बहुत प्रसन्न हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है और अभी उसको कोई चिंता नहीं है। तो कृष्ण अभी तक उनके सामने नहीं है, फिर भी संदेश आ गया कि कृष्ण आ रहे हैं। तो रुक्मिणी राह देखती है और बाद में अपने सहेली का हाथ पकड़कर वो मंदिर के बाहर आती है। तो कृष्ण तो अकेले निकले थे, तो कृष्ण जब अकेले निकले तो बलराम ने सोचा ये ठीक नहीं है, क्योंकि कृष्ण जब आके, वात्सल्य भाव है, बलराम पांचों पांच भावों में भगवान की सेवा करते हैं, तो मां को जैसे पुत्र कितना भी बड़ा हो छोटा ही लगता है, तो उसी प्रकार बलराम को, हालांकि उनकी कल्पना है कृष्ण कौन है, लेकिन फिर भी वात्सल्य भाव से वो विचार करते हैं कि ऐसे कृष्ण अकेले गए ठीक नहीं है, तो अपना सैन्य लेकर बलराम भी पीछे पीछे आकर वहां कौंडिन्यपुर में आते हैं। तो यहां कृष्ण निकले अपना रथ लेकर, और वो जो रुक्मिणी आ रही थी तो कृष्ण ने देखा, दोनों की नजरें मिल गई और कृष्ण ने बुलाया और रुक्मिणी रथ पर चढ़ गई। तो कृष्ण ने बुलाया, तुरंत रुक्मिणी चढ़ गई। तो यह तैयारी होनी चाहिए, रुक्मिणी ने कोई संकोच नहीं किया। तो हम सोच रहे बुलाया 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 आ गए, और कृष्ण बोले चलो अभी, लेकिन नहीं 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 अभी बहुत कुछ काम है, मेरा डिग्री बाकी है और नौकरी करना है, शादी करना है, बाद में देखेंगे, थोड़ा मजा कर लेता हूं, जब तो कर रहा हूं तो सब कुछ चल रहा है, आऊंगा जरूर आऊंगा, आपके पास ही आऊंगा और कहां नहीं जाऊंगा। तो तुरंत बुलाया चलो, तो संकोच नहीं। तो ये ईगरनेस चाहिए, भगवान जब भी बुलाते हैं, और इस कलयुग में कोई गारंटी नहीं कब बुलाएंगे, बाकी के समय तो कम से कम बूढ़ा होगा कर सकते थे, इस कलयुग में कोई गारंटी नहीं है। तो ये कब होगा, अगर हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होगा तो जब भी बुलाएंगे भगवान निकल जाएंगे। जैसे तुकाराम महाराज, भगवान ने बुलाया, उनके स्वप्न में आ गए, तुकाराम अभी आपका काम हो गया, जिस काम के लिए आप आए थे आपका काम हो गया, अभी चलो, क्योंकि यहां अगर रहोगे तो अति परिचयात अवज्ञा, क्योंकि लोग आपको सहजता से लेंगे, इसलिए चलो आप। तो तुकाराम महाराज निकले चलो, और सबको बोलने लगे कि मैं जा रहा हूं वैकुंठ। अगर उन्होंने सहजता होकर, उस समय उनके चार बेटे थे और उसकी पत्नी, तुकाराम महाराज की पत्नी 5 महीने की गर्भवती थी, कह सकते थे कि थोड़ा और 4 महीने रुको, डिलीवरी हो जाए थोड़ा सब कुछ कर लूंगा और बाद में वैकुंठ आऊंगा, आना ही है। तुकाराम ने नहीं सोचा, चले, वो सोचे नहीं कि मेरे पत्नी का पीछे क्या होगा। श्रीधर महाराज भी, आप देखिए वो जंगल में रहते थे और फैमिली थी, और जब वो शादी किए वही सोच रहे थे कि अभी तो मेरा भक्ति आधा कम हो गया, आधा कम मतलब अर्धांगिनी है ना, आधा कर सकते हो, अर्धांगिनी की वजह से थोड़ा डिस्टर्ब होता है, इसलिए आधा हो गया मेरा भक्ति। वो बाद में वो गर्भवती रही तो सोचने लगा कि अभी वो अंधड़ी रह गया, क्योंकि 2 आ गया अभी, और पुत्र प्राप्ति भी हो गई, वो सोचने की अभी खत्म, अब तो मुझे कोई आशा ही नहीं, क्योंकि अभी शादी किया, पत्नी आ गई, पुत्र भी आया, तो अधो गृह क्षेत्र सुत आप तो वित्तैर जनस्य मोहर अहम ममेति, अभी कोई आशा ही नहीं। तो ऐसे श्रीधर महाराज सोच रहे थे, उस समय महाराज नहीं थे, श्रीधर प्रभु थे, तो सोच रहे थे कि भगवान अभी क्या करूं, खत्म हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी तो बस इनका संभाल करने में मेरा आयु चला जाएगा, अभी क्या करूं। सोचते सोचते वो दीवार पर देखते हैं चिपकली, चिपकली को देखते हैं कि ये चिपकली अपने छोटी सी चिपकली को, बेबी चिपकली को, बराबर है ना, चिपकली चिपकली, थोड़ा ये मराठी है इसलिए चिपकली, चिपकली क्या बोलते हैं, चिप चिपकली, अच्छा कंप्यूटर का चिप, ये चिपकली, चिपकली ये चिपकली बेबी है, ये बेबी चिपकली जन्मते ही वो निकली और ऐसा अपना जिह्वा बाहर निकाल के कीड़ा पकड़ लिया और खा ली। तो श्रीधर महाराज को देखते हैं, देखिए भक्त की आंखें ऐसी खुली होनी चाहिए, कहां भगवान क्या साक्षात्कार देंगे पता नहीं, आप देख रहे हैं, देखिए क्यों 24 गुरु है अवधूत को, क्योंकि हर एक से कुछ कुछ सीख रहा है, हर एक से सीख रहा है कि मैं कैसे भगवान के प्रति जाऊं। तो अपनी आंखें खुली रहे, श्रीधर महाराज ने खुली रखी, चिपकली से सीख लिया, अरे मैं सोच रहा हूं मेरे वजह से पत्नी है बेटे ऐसा कुछ नहीं, तुरंत छोड़ दिया जंगल में भी और भागे भगवान के सेवा में। तो ये भगवान कब बुलाएंगे हमें बताने। अगर हम जब हरे कृष्णा कर रहे हैं तो भगवान बोलेंगे चलो अभी या तो बनेंगे, चलो अभी ब्रह्मचारी बनो, हाँ तो तैयार होना चाहिए। गृहस्थों को बोलेंगे अभी घर छोड़ो, तैयार होना चाहिए। तो कभी भी जो भी हम प्रामाणिकता से जप कर रहे हैं तो भगवान का बुलावा आएगा। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम थोड़े पीछे देखेंगे। भरत महाराज की कथा में हम देखते हैं उन्होंने कैसा घर को त्याग दिया। प्रभुपाद वर्णन करते हैं जैसे मल के समान। अभी मल जब हम छोड़ते हैं कैसा लगता है? खराब लगता है बहुत। अरे क्या सबसे कीमती चीज चली गई मेरे शरीर से। ऐसा एक पीछे मुड़कर देखते हैं क्या क्या छोड़ा मैंने। तो प्रभुपाद कहते हैं ऐसे भरत महाराज ने घर छोड़ा। तो क्यों ये उदाहरण दिए हैं, किस लिए उदाहरण दिए जा रहे हैं? इस भौतिक प्रकृति में रहकर भी हमारा चित्त कहाँ होना चाहिए, हमारी भावना कैसी होनी चाहिए। उसी प्रकार परीक्षित महाराज, तब ब्राह्मण पुत्र ने शाप दे दिया कि आपको 7 जन्म में आपका मृत्यु हो जाएगा। तुरंत घर में भी नहीं गए, घर में भी नहीं गए। और सुखदेव गोस्वामी वहां स्तुति करते हैं परीक्षित महाराज की। क्या कहते हैं कि आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु राज्ये च अविकले नित्य विरूढ़ा ममता जुहो। आत्मजाया पति पत्नी को छोड़ा, सुत पुत्र को छोड़ा, आगार मतलब जितना भी संपत्ति है प्रॉपर्टी है उसको त्याग किया। आत्मजाया सुत आगर पशु मतलब जितने भी घोड़े बैल हाथी जितना भी सैन्य के पशु है त्याग दिया। द्रविण जितना भी पैसा है जितनी भी संपत्ति है उसको त्याग दिया। बंधुषु अपने भाई और मित्रों को भी त्याग दिया। राज्य सबसे देखिए राज्य को छोड़ना। आजकल देखते हैं हम कैसे राजकीय लोग 80 वर्ष 90 वर्ष हो गए तो भी पंत प्रधान होने की सोचते हैं। राज्य को छोड़ देना, ये सार्वभौम राजा है, कोई चैलेंज ही नहीं है। और अगर मन में आ जाए तो जो शाप मिला है उसका भी प्रतिकार सकने की शक्ति है। फिर भी विरूढ़ा ममता जुहो, भगवान के प्रति प्रेम है, इसलिए ये सब कुछ छोड़ना अविकले। वो विचार भी नहीं कर रहे थे कि ये मुझे छोड़ना है, विचार भी नहीं कर रहे थे ये मुझे छोड़ना है। ये कब भाव आएगा? अगर हम जीवन भर स्वीकार किया है कि सब कुछ भगवान का ही है, इसमें छोड़ने का क्या है? ऐसे ही प्रभुपाद 26 सेकंड एवेन्यू में जब प्रचार कर रहे थे, थोड़े थोड़े लोग आ रहे थे, उनमें से एक भक्त ने प्रभुपाद को देखा, इतने कष्ट कर रहे हैं प्रभुपाद 70 वर्ष की उम्र में, सब कुछ वही करते हैं। और इस भक्त को, उसका नाम है किथैम, उनको बुरा लगा और वो भी सोचने लगे कि अरे मैं सब कुछ त्याग करके प्रभुपाद की सेवा में जाऊं। तो कित आ गए प्रभुपाद स्वामी जी के पास उस समय और कहा स्वामी जी मैं सब कुछ छोड़कर आपकी सेवा में, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगना चाहता हूं। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा कि आपके पास छोड़ने के लिए है क्या? इसका विचार करना चाहिए, हमारे पास कुछ है छोड़ने के लिए? एक ही चीज है जो अहंकार से हम सबको पकड़ के रखे हैं, उसको छोड़ना। और भक्त के मतलब क्या है? वही जो भी हमारे पास है उसको हम उसका भोग लेने से इच्छा न करते हुए भगवान की सेवा में लगा देना, यह है भक्ति का लक्षण। तो ये परीक्षित महाराज का अविकले, क्यों दुख नहीं हुआ, क्यों ऐसा नहीं लगा? भरत महाराज को क्यों नहीं लगा ऐसा कि मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं? तुकाराम महाराज को क्यों नहीं लगा ऐसा मैं सब कुछ छोड़ रहा हूं? रुक्मिणी को भी नहीं लगा, भीष्म को भी नहीं लगा, क्योंकि विरूढ़ा ममता जहो, परीक्षित महाराज का सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते, विरूढ़ा ममता जहो, भगवान के प्रति प्राप्त किया हुआ प्रेम। तो रसोवर्जम रसोप्यसम, अगर हम भगवान की प्रेम की प्राप्ति नहीं करेंगे, जैसे रुक्मिणी के हृदय में है वो खाली श्रवण करके, और उससे हृदय शुद्ध हो गया, बाद में इच्छा हो गई उसकी प्राप्ति करने की, तो इसलिए रुक्मिणी के शुद्ध हृदय को देखकर भगवान आए और बुलाया, आ तो गए, बुलाया तो रथ पे भी बैठ गई और भगवान उसको सामने उठाकर, सबके सामने रथ में बैठकर उठाकर लेके गए। ये देखा जरासंध ने, देखा शल्व ने, देखा शिशुपाल ने देखा, और वो तो सोच रहे ऐसे ही, ये तो घात हो गया, भगात हो गया, ये तो सबके सामने ऐसे वाघ की शिकार दूसरा कोई उठा के लेके जा रहा है, ऐसे हो गया, और ये कैसे हो सकता है। तो उनके पीछे लगे, तो सब अपने सेनाओं को इकट्ठा किया और उनके पीछे लगे। तो भगवान तो इतने जोर से अपने रथ को लेके चले गए, लेकिन बलराम जी इसलिए तैयार थे कि कृष्ण रुक्मिणी को लेके जा रहे हैं, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए भगवान थे। बलराम जी आ गए और बलराम जी ने युद्ध किया। तो जब हम गुरु की शरण लेते हैं कृष्ण की प्राप्ति करने के लिए, तो कृष्ण के साथ हम जब जाते हैं, जो भी हमारे संकट है गुरु की कृपा से, बलराम जी कौन है, आदि गुरु है, एक गुरु की कृपा से जो भी भगवान के पास जाने के लिए हमारी कठिनाइयां है उसको स्वयं गुरु नाश कर देते हैं। तो ये बलराम जी, रुक्मिणी तो भक्त है, तो भगवान उनको लेके जा रहे हैं, तो उनके पीछे बलराम जी सब सैन्य का संहार करते हैं। और इस प्रकार कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका में आ जाते हैं, और ये उनकी वो पहली पत्नी है। ये सब द्वारका सज गई है और वहां पर, वहां उनका विवाह हो जाता है। तो इस रुक्मिणी के इस प्रसंग से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, खास करके रूप गोस्वामी का ये भक्ति में उन्नति करने का जो श्लोक है, उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात सतोवृत्ति षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति, ये जो है ये रुक्मिणी से हम देखते हैं किस प्रकार से उत्साह से प्रेम पत्र भेजा, निश्चय से कि मैं आपसे ही शादी करूंगी, धैर्य रखा आने तक, तत्कर्म वही उदाहरण देख रही है कि कैसे भक्ति मार्ग में महाजनों के पद पर चलना चाहिए, तो वो अपने उदाहरण से सिखा रही है। और संगत्यागत शिशुपाल और उनके जो जो लोग शादी करने के लिए आए थे उनका त्याग किया, सतोवृत्ति भगवान का चिंतन को कभी नहीं छोड़ा, और इससे भक्ति में उन्नति हो जाती है। तो इसको खाली भगवान के एक विवाह समझकर छोड़ना नहीं चाहिए, तो दोनों भी है। भगवान ने ये प्रेम भी प्रदर्शित किया कि जे मेरे भक्त अगर मेरे ऊपर प्रेम कर रहा है तो किस प्रकार से उसका स्वीकार भगवान करेंगे। तो रुक्मिणी के माध्यम से बताया कि किस प्रकार से अगर हम भगवान से प्रेम करते हैं तो किस प्रकार से उत्साह निश्चय धैर्य दिखाना चाहिए, और बाद में जब लेके आते हैं बलराम जी के उदाहरण से हम देखा कि किस प्रकार से गुरु है हमारे सब जो भी कठिनाइयां हैं उसको दूर कर देते हैं। आज इधर ही रोकेंगे। प्रभुपाद की, हरे कृष्णा।